नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुजा में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनिबो के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा, भारत नाइजीरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को देता है उच्च प्राथमिकता। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सिर्फ एक दिन शेष। राजनीतिक दल कर रहे हैं मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता लगातार पांचवें दिन गंभीर श्रेणी में। मौसम विभाग ने अगले दो दिन क्षेत्र में हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने बिहार के राजगीर में अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में जापान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार संध्या के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनिबो ने आज अबुजा में बातचीत की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच कार्यनीतिक भागीदारी की समीक्षा की और आपसी संबंधों को बेहतर बनाने पर चर्चा की। दोनों पक्षों के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। प्रधानमंत्री ने इन चर्चाओं को रचनात्मक बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत नाइजीरिया के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है।
नाइजीरिया के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम उच्च प्राथमिकता देते हैं। रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक विषय, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं, हमारा सहयोग मजबूत है और अनेक नई संभावनाएं भी हमारे इस संबंधों में जुड़ी हुई है। आतंकवाद, अलगाववाद, पायरेसी या ड्रग तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हम मिलकर काम करते रहे हैं और मजबूती से हम आगे भी करते रहेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नाइजीरिया यात्रा है। उन्होंने कहा कि भारत नाइजीरिया के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत के लिए मानवीय सहायता के तौर पर 20 टन सामग्री भेजेगा।
पिछले महीने नाइजीरिया में फ्लड्स में हुई जानहानि के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से और मेरी तरफ से संवेदनाएं प्रकट करता हूं। आपके राहत कार्यों के समर्थन में भारत 20 टन मानवीय सहायता भेज रहा है।
श्री मोदी ने नाइजीरिया को ब्रिक्स का भागीदार देश बनने पर बधाई दी। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत और नाइजीरिया ग्लोबल साउथ के मुद्दों को विश्व मंच पर उठाते रहेंगे। वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते सांस्कृतिक आदान प्रदान, सीमा शुल्क सहयोग और सर्वेक्षण सहयोग से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए कहा कि ये सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि भारत की जनता का भी सम्मान है।
मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। हमें भारत और नाइजीरिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा।
श्री मोदी ने कहा कि अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग भारत की उच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में नाइजीरिया की महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था में भारतवंशियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने नाइजीरिया में अबुजा में भारतीय समुदाय से कहा कि नाइजीरिया में रह रहे प्रत्येक भारतवंशी ने भारत को गर्वित किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों ने नाइजीरिया में योग को लोकप्रिय बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के भारतीय समुदाय के प्रयासों के कारण अब नाइजीरिया के छात्र हिंदी सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का रक्षा निर्यात लगभग 30 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अब भारत 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात करता है। प्रधानमंत्री मोदी आज नाइजीरिया से ब्राजील के लिए रवाना होंगे। वहां की दो दिन की यात्रा के दौरान वे G20 शिखर बैठक में शामिल होंगे। इस शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों के बारे में भारत का दृष्टिकोण रखेंगे। इस दौरान श्री मोदी की कई नेताओं से मुलाकात की भी संभावना है। अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 21 नवंबर तक गयाना की यात्रा पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार श्री शाह कल इस मुद्दे पर विस्तृत बैठक करेंगे। गृह मंत्रालय ने कल बताया था कि मणिपुर में सुरक्षा बलों को शांति बहाली के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि दोनों समुदायों के बीच उपद्रवी हिंसा में कई लोगों की मृत्यु हुई और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हुई। मंत्रालय ने कहा है कि हिंसक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असम के कछार जिले में बराक नदी से आज एक महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार ये शव सोमवार को कुकी चरमपंथियों द्वारा अगवा किए गए 6 लोगों में से एक का हो सकता है। इससे पहले 3 बंधकों के शव जीरीबाम की बोर बेकरा तहसील से बरामद हुए थे, जिसके बाद मणिपुर के सभी घाटी जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। इस बीच राज्य के गृह विभाग ने जीरीबाम और फेरजौल जिलों में इंटरनेट और डेटा सेवाएं 2 दिन के लिए बंद कर दी हैं। यह कदम सोशल मीडिया पर अफवाहों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। मणिपुर में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनराड संगमा ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को इसकी जानकारी दे दी है। मणिपुर विधानसभा में नेशनल पीपुल्स पार्टी के 7 और भारतीय जनता पार्टी के 32 विधायक हैं। फिलहाल राज्य की बीरेन सिंह सरकार को एनपीएफ, जनता दल यूनाइटेड और निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। श्री संगमा ने अपने पत्र में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए कहा है कि बीरेन सिंह सरकार मौजूदा संकट का समाधान करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में नाकाम रही है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब केवल 1 दिन शेष है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गोमिया, सिंदरी और नाला में चुनाव सभाओं में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया। श्री नड्डा ने हेमंत सोरेन पर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने का भी आरोप लगाया।
ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, इसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, के लिए आधार कार्ड बनता है, उनका वोटर आईडी बनता है, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाता है, उनको राशन कार्ड बनता है और फिर उनको जमीन दिलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा उन्हें निशाना बना रही है। उन्होंने गिरिडीह, जामा और जामताड़ा में रैलियों में कहा कि भाजपा लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटका रही है।
और आज घुसपैठी की बात है तो ये बताए ना, कहाँ पर है लोग, आंकड़ा देना, डाटा देना। जमीन हड़प रहे हैं, ये फलना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। तो ये ऐसे चीजों को खुरीदते हैं जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और इनकी रोटी वहीं पकती है जहां सांप्रदायिक तनाव बना रहे।
कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और वामपंथी दलों के नेताओं ने भी झारखंड के कई क्षेत्रों में रैलियां और रोड शो किए। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 20 नवंबर को और मतगणना 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में आज विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए सार्वजनिक बैठकें, रोड शो और रैलियां की। 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे बंद हो जाएगा।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक जोरदार प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, बीएसपी के अध्यक्ष मायावती सहित अन्य नेताओं ने आज विभिन्न जगहों पर चुनाव प्रचार में भाग लिया। धुले में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार राज्य को सर्वांगीण विकास की दिशा में ले जा रही। रही है। प्रियंका गांधी ने नागपुर के महाल क्षेत्र में रोड शो किया। इससे पहले गढ़चिरौली में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर न बढ़ाने और जाति जनगणना को मंजूरी न देने का आरोप लगाया। भाजपा के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज अहिल्यानगर में प्रचार किया। कुणाल शिंदे के साथ अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत ने आज आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री गहलोत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नाम लिखे अपने त्यागपत्र में सरकार द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। दिल्ली भाजपा के नेता और पूर्व विधायक अनिल झा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने श्री झा को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आज शाम 5 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 447 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के अन्य इलाकों में भी AQI का स्तर 450 के पार दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले 2 दिन सुबह और शाम के दौरान धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में सुबह और रात के समय कोहरे की परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार शहर के प्रमुख इलाकों में AQI का स्तर 450 से अधिक हो गया है। CPCB के मुताबिक आज बवाना में AQI का स्तर 476, IGI एयरपोर्ट पे 467, विवेक विहार में 457, नेहरू नगर में 453, ITO इलाके में 449 और मंदिर मार्ग पर 444 दर्ज किया गया है। गंभीर वायु गुणवत्ता के कारण शहर के लोगों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रहीसुद्दीन रिहान के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में लगातार खराब हो रही वायु गुणवत्ता के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में कल सुबह 8 बजे से GRAP4 लागू करने का निर्णय लिया है। बिहार में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में जापान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारतीय टीम लगातार 5वीं जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही। चीन दूसरे, मलेशिया तीसरे और जापान चौथे स्थान पर रहा। मंगलवार को सेमीफाइनल में भारत का सामना जापान से और चीन का मुकाबला मलेशिया से होगा। फाइनल मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज रात सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पर चर्चा प्रसारित करेगा। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेन गुप्ता इस चर्चा में भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुजा में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनिबू के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा भारत नाइजीरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को देता है उच्च प्राथमिकता। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सिर्फ 1 दिन शेष। राजनीतिक दल कर रहे हैं मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता लगातार 5वें दिन गंभीर श्रेणी में। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन क्षेत्र में हल्का कोहरा रहने की संभावना व्यक्त की। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने बिहार के राजगीर में अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में जापान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।